नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को मजबूती दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्री विकास में स्थिरता आवश्यक है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत के निर्णय राष्ट्रहितों के अनुरूप होते हैं और किसी एक गुट के साथ जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत संवाद और कूटनीति पर निरंतर जोर देता आया है। प्रवर्तन निदेशालय उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार आज मुंबई और हैदराबाद में 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। लगभग 15 टीम तलाश अभियान चला रही हैं। ये छापेमारी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों के परिसरों पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ जारी प्रयासों का जायजा लेने के लिए पुंछ के शाहसितार और राजौरी सेक्टर के हंजनवाली का दौरा किया। इस दौरान उन्हें संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी पहलुओं को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों से अवगत कराया गया। असम में वायुसेना का एक सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। यह हादसा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हुआ, जो जोरहाट वायुसेना अड्डे से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि अधिकारियों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। नेपाल में आम चुनाव के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल 3-3 सीटों पर आगे हैं। मतगणना आज रात तक पूरी हो जाने की संभावना है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए कल हुए मतदान में लगभग 60% वोट डाले गए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और 110 का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होना है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने दोहा स्थित अल उदैद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। अल उदैद हवाई अड्डा पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि खतरा टल गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। इसराइल की वायुसेना ने आज लेबनान में हिजबुल्ला के बेरूत स्थित मुख्यालय और सैन्य साजो सामान से लैस 10 ऊंची इमारतों पर हमला किया। इसराइल ने बताया कि हमलों के तहत कार्यकारी परिषद के मुख्यालय और मानव रहित हवाई वाहनों के गोदाम को निशाना बनाया गया, जिनका इस्तेमाल ईरान समर्थित हिजबुल्ला इसराइल पर हमले करने के लिए करता है। इसराइल ने घोषणा की कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर जैद अली जुमा को मार गिराया है। जुमा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के तोपखाने प्रमुख के रूप में कार्यरत था। इसराइल की नौसेना ने त्रिपोली क्षेत्र में हमास कमांडर वसीम अतल्ला अली को भी मार गिराया। दिल्ली हवाई अड्डे ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो सकती है अथवा उनके समय में बदलाव भी हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।